मनुष्य के जीने के लिए संसार में दो मार्ग हैं। एक मार्ग तो हम सब जानते ही हैं, संसार के सुख प्राप्ति का मार्ग या भोगों का मार्ग। दूसरा मार्ग है अंतर्यामी प्रभु के अनुभव का मार्ग, इसको शांति का मार्ग कहते हैं, मोक्ष का मार्ग कहते हैं या ज्ञान का मार्ग कहते हैं। तो बचपन से ही बाहर के मार्ग से या संसार के मार्ग से हम अच्छी तरह से परिचित हैं, लेकिन अंदर का मार्ग तभी आपको पता लगता है जब या तो उस प्रकार के संस्कार लेकर हम संसार में जन्म लें, या फिर किसी पूर्ण गुरु से, पूर्ण गुरु की संगत से, या ऐसे वातावरण या ऐसे समाज में हमारा रहना हो जाए कि जहाँ ईश्वर का विज्ञान भी समझाया जाता, तब मनुष्य अंदर के रास्ते को पकड़ लेता है और ईश्वर के मार्ग पर चल जाता है। बिना विचार के इस मार्ग पर चलना संभव नहीं है। संसारी मार्ग पर तो बिना विचार के भी इंसान चल सकता है, क्योंकि तो सारे पशु पक्षी, सारे जीव जंतु, कोई उनकी ट्रेनिंग नहीं हो रही, कोई एजुकेशन नहीं हो रही, अपना पूरा शारीरिक जीवन अपने तरीके से ठीक प्रकार से वो व्यतीत करते हैं। लेकिन मनुष्य जन्म लेकर हमारे अंदर इतने प्रकार के भय रहते हैं, इतनी प्रकार की चिंता रहती है कि हम बिना पढ़े लिखे, बिना सर्विस किए, बिना पैसा कमाए, हमको लगता ही नहीं कि हमारा जीवन चल सकता है। तो बाहर संसार की पूरी दौड़ हमारी रहती है, जबकि सारी प्रकृति को हम देखते हैं कि शरीर तो सबके है, सबके शरीर जीवन जी रहे। मैं ही सबसे ज्यादा चिंतित हूं, जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है, मनुष्य तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान कहा जाता है ना, तो पक्षी पशु पक्षी के मुकाबले भी मैं उनसे ज्यादा बेचैनी का जीवन व्यतीत करता हूं संसार में। मेरी ये दुर्दशा कि कोई पशु पक्षी भविष्य की प्लानिंग नहीं करता, मैं जन्म से लेकर मृत्यु तक की प्लानिंग करता हूं। अपनी ही नहीं, भविष्य में आने वाले परिवार की भी मैं प्लानिंग करता हूं, इतनी लंबी मेरी सोच होती है। तो सत्पुरुष जो दूसरी चीज कह रहे हैं, हम तो रात दिन संसार में सफलता के लिए, संसार में जीवन हमारा ठीक प्रकार से व्यतीत हो, सुख प्राप्त होते रहे, चैन से जी सकूं मैं, इसके लिए सारी मैं कोशिश करता हूं। पर तो सत्पुरुष दूसरी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं छिन्न छिन्न साचा नाम कमाओ, प्रभु की महिमा पल पल का। हर क्षण मैंने उस प्रभु की याद करनी है जिसको यह साचा नाम कहा गया, उसकी कमाई करनी है और उसी की महिमा का मन के अंदर मनन करना है, बुद्धि से निर्णय करना है। संसार में सबसे ज्यादा आनंद देने वाली कोई चीज है तो वो ईश्वर है, और इसीलिए उसको हर पल याद करने की बात ये मानते हैं। करने हार सोही कृपाल, तिसकी करनी करे निहाल। वास्तव में इस सृष्टि में कोई करने वाला है तो वो केवल प्रभु ही है, वो केवल ईश्वर ही है। क्योंकि मैं तो अपना केवल घर संभालूंगा, घर भी उनसे नहीं संभाला जाता, घर तो छोड़ो मैं अपने को ही ठीक तरह से नहीं संभालता, और वो पूरी सृष्टि को संभालेगा, धरती सूर्य चंद्रमा सारी प्रकृति, और मनुष्य का जीवन कैसे चलेगा, जितने साल की आयु लेके आ रहा है वो उतने कैसे जीवित रहेगा, उसकी भी व्यवस्था प्रभु ने मेरे जन्म लेते ही कर दी। हम हमारा परिवार तो केवल एक अहंकारी करता है कि मैं पाल रहा हूं, यदि विचार से देखें तो वास्तव में तो हमारे शरीर को ईश्वर पाल रहा है। हम तो अपनी मर्जी से एक श्वास भी नहीं ले सकते, संसार में पता नहीं, गर्भ में आ भी गए तो संसार में आएंगे नहीं आएंगे ये भी हमको पता नहीं। तो सारी प्रभु की सृष्टि मेरा पालन कर रही है, लेकिन मेरे सोचने के तरीके इस प्रकार के हैं कि मैं संसार को ही सब कुछ समझता हूँ, प्रभु की तो शायद दिन में एक बार भी याद मुझे ना आती, ये मेरी हालत है। इसलिए वाणी कह रही है कि करने हार सोही कृपाल तिसकी करनी करे निहार। तो ये यदि कोई निहाल कर सकता है, निहाल का मतलब होता है चित्त की शांति, चित्त का आनंद, चित्त का संतोष। वो कहते हैं तिसकी करनी करे निहार, यदि कभी तेरे इस जीवन में कभी संतोष आया तेरे मन के अंदर, तो संतुष्ट हुआ, तेरे जीवन में शांति आई, वो कह रहे हैं केवल उसकी करनी ये आनंद ये शांति तुझको दे सकती है। संसार में कोई वस्तु उसने ऐसी नहीं बनाई कि वो चैन वो संतोष तुझको प्राप्त हो सके। तो अब बताइए करने हार सोही कृपाल, जब उसके कारण ही तुझको मिलेगा संतोष के लिए ही तो मैं जीता हूं संसार में, मुझे संतुष्टि चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, कि संसार सारा मिलकर भी मुझको वो दे नहीं सकता, क्योंकि शरीर की रचना ही वैसी है, जवानी आई कितनी उमंग होती है, कितनी सामर्थ्य होती है कर्म करने, लेकिन बुढ़ापा आ जाता है, कोई रोक सकता है? जिंदगी है मौत आ जाती है, श्वास है रोग आ जाता है। तो संसार में तो तेरे आगे मजबूरियां ही मजबूरियां, लेकिन प्रभु का दरबार ऐसा है जहां कोई मजबूरी नहीं है, वहां तो नित्य आनंद में स्थित रह सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि अपनी गफलत मान त्याग, आज्ञा प्रभु की में उठ जा। तो मनुष्य जन्म में मेरे लिए डायरेक्शन क्या है? अपनी गफलत मान त्याग, कि मैं करता मैं गृहस्थी चला रहा हूं, मैं अपना मालिक। तो कह रहे हैं कि आज्ञा प्रभु की में उठ जा, तू प्रभु के हुक्म में जीना सीख, जिसकी बात सत्पुरुष करते हैं, जिसकी बात वाणी करते हैं। ईश्वर प्रायण होकर जी, तू देह प्रायण होकर, संसार प्रायण होकर मत जी। तो ये दो मार्ग बड़े बड़े ही स्पष्ट हैं, लेकिन क्योंकि मुझे अध्यात्म का विज्ञान का पता नहीं, ना मुझे प्रारब्ध के विज्ञान का पता है, ना मुझे संस्कार के विज्ञान का पता है, ना मुझे पूर्व जन्म के विज्ञान का पता है, हर जगह मैं धोखा खाता हूं, हर जगह मैं संशय करता हूं, मेरी बुद्धि किसी निर्णय पर पहुंचती ही नहीं। यदि मुझे वाणी पर भरोसा आ जाए, यदि ये विश्वास आ जाए कि वाणी किसी ह्यूमन राइटिंग तो है नहीं, किसी मनुष्य तो लिखी है, ये तो वही ईश्वरीय ज्ञान है जो मेरे लाभ के लिए मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुआ है। तो प्रभु ने अवतार लिया गुरु रूप में धरती पर आए, उनके मुख से वो उन्होंने वो वाणी प्रकट करी मेरे वास्ते, और मैं इस वाणी को पढ़ने की भी जरूरत नहीं समझता, या मेरे अंदर ये जड़ एक निश्चय है कि वाणी तो मुझको बहकाएगी नहीं, वाणी तो मुझको केवल सत्य ही सुनाएगी या सत्य ही बताएगी। जिसमें मेरे जीवन का कल्याण है वाणी में वो सारी बातें लिखी हुई है, सारी बातें आई। तो अब बताइए कि जिसमें मेरे जीवन का कल्याण है, जिसको जानकर जिसको पढ़कर जिस पर विश्वास करके मेरे जीवन जीने की दिशा और दशा ठीक हो सकती है, उस पर मैं मेहनत करने को तैयार हूं। संसार की पढ़ाई के लिए मैं 20-20 साल खर्च कर देता हूं, और लोग मुझको धोखा दे जाते हैं, धोखा किस सेंस में कि जीवन सफल बनाने के लिए, खुश होने के लिए, प्रसन्न होने के लिए मैं मेहनत करता हूं, और चैन मुझको मनुष्य जन्म में कभी मिल ही नहीं। एक साल भी शायद जीवन में किसी का ना गुजरता हो तो आप चैन का साल कहेंगे, ये बड़े चैन का साल। तुलनात्मक दृष्टि से चैन का हो सकता है, एक साल आपने बहुत बेचैनी होगी उसकी तुलना में दूसरे वर्ष में आपको चैन मिल सकता है, तुलनात्मक चैन है, वास्तव में अपने आप में वो चैन नहीं है, हर वर्ष आपका बेचैनी के साथ ही व्यतीत होता है। लेकिन प्रभु के लिए कह रहे हैं कि जिसने प्रभु का नाम हर पल याद रखा, कहते हैं कि उस वो निहाल हो जाता है, उसको अपनी देह के अंदर ही आनंद की प्राप्ति होती है, परम संतोष की प्राप्ति होती है, जिसको प्राप्त करके फिर उसके अंदर कोई कामना कोई इच्छा जो उसको परेशान करती है वो उठती ही नहीं। तो ऐसा वो तृप्त करने वाला प्रभु का ज्ञान प्रभु का अनुभव इस देह के अंदर मौजूद है, और मैं संसार में कैसा बेचैन होकर ज्ञान पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा हूं, पशुओं से भी मेरी बुरी हालत है, सत्य यही है मेरे भाई। क्योंकि पशु इतना बेचैन नहीं होता क्योंकि उसको भविष्य नहीं सोचता, मैं लंबी सोचता हूं इसलिए परेशान हो जाए। इसीलिए वो कहते हैं कि सब कुछ हुआ तिसका जान, मार्ग मुकत करो पहचान। जो कुछ भी तेरे जीवन में घटता है, जो कुछ भी तेरी प्रेजेंस में प्रकृति के अंदर घटता है, कहते हैं सब कुछ हुआ तिसका जान। यहां कारणकर्ता कोई मनुष्य नहीं है, सारे जगत का कारणकर्ता वो प्रभु खुद है। मेरे प्राप्त के अनुसार, लोगों के प्राप्त के अनुसार वो सारी परिस्थितियां प्रकृति में पैदा होती हैं। मुझे इसीलिए सुख भी मिलते हैं दुख भी मिलते हैं। लगता ऐसा है कि मेरे वर्तमान कर्मों का फल है, सत्य यह है कि तेरे वो प्रारब्ध का फल है। जो पिछले जन्म में जो कराया उसका जो एक अंश इस जन्म में भोगने को मिला तुझको, उसके अनुसार तेरी सारी परिस्थितियों का निर्माण ऑटोमेटिकली प्रभु ने किया है। तू इस जन्म में उसका कारणकर्ता नहीं है, ये तेरे पिछले कर्मों का फल है। इसका मतलब ये हुआ मैं निश्चिंत होकर वर्तमान जन्म में प्रभु की भक्ति कर सकता हूं, लेकिन कब? जब इस ज्ञान पर मेरा पूर्ण निश्चय आ जाए, तब मैं निश्चिंत होकर प्रभु की भक्ति कर सकता हूं और संसार के जो कर्म है जो प्रारब्धवश मेरे सामने आएंगे उसको मैं प्रभु हुक्म में देखता हुआ बिना किसी चिंता फिक्र के कर्तव्य बोध से मैं उस कर्म को भी कर सकता हूं, जैसा कि सत्पुरुषों ने किया है जिसको हम लीला कहते हैं। सत्पुरुषों ने क्या शादी नहीं करी? सत्पुरुषों ने क्या बच्चे नहीं पाले? सत्पुरुषों ने क्या राज्य नहीं किया? पूरे देश को नहीं संभाला क्या? सत्पुरुषों ने सारे कार्य किए। सत्पुरुषों ने क्या युद्ध नहीं किए? तो सारे कर्म हम इस देह से करते हैं वो सत्पुरुषों ने भी किए, लेकिन वो कर्म करते हुए भी वो ईश्वर से दूर नहीं हुए, ईश्वर में ही स्थित है। तो ये वो कला है जो सत्पुरुष हमको भी सिखाना चाहते हैं, लेकिन हम हर ज्ञान को हर उनकी बात को संसार के तरीके पे थोप देते हैं। कहते हैं बात तो ठीक है लेकिन संसार में कैसे हो सकता है, कैसे ऐसा चल सकता है? तो हमने अपनी बुद्धि इसमें गहरी लगाई ही नहीं। संसार में तो पीएचडी कर लेते हैं किसी भी ब्रांच में, लेकिन इस अध्यात्म में जिसमें मेरा सारा जीवन जिस पर निर्भर है उस पर मैं पीएचडी करने को तैयार नहीं हूं, उस पर मैं गहराई से सोचने को तैयार नहीं हूं, उसके लिए वक्त खर्च करने को तैयार नहीं। ऐसी मेरी बुद्धि है। इसीलिए अब देखिए कह रहे हैं कि सब कुछ हुआ तिसका जान, मार्ग मुकत करो पहचान। तुम्हें जानना यह था, बुद्धि का निश्चय यहां लाना था कि जो कुछ भी प्रकृति में घटनाक्रम हो रहा है वो उसके हुक्म के अंतर्गत हो रहा है, या यूं कहें कि लोगों के प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है। बात एक ही कहने के तरीके को तो कहते हैं कि मार्ग मुकत करो पहचान। यदि तू ऐसा करता है या तेरी बुद्धि में ऐसा निश्चय आता है तो कहते हैं तेरी मुक्ति का मार्ग खुला हुआ है। मुक्ति किस चीज से? मैं जब खाली भी बैठ जाऊं घर के अंदर, खुला समय मेरे पास है, लेकिन मन आपको बेचैनी रखता है, मन आपको चैन से बैठने भी नहीं देता, चैन से लेटने भी नहीं देता। कहते हैं कि इस मन के झंझट से, मन की परेशानी से तू मुक्ति हासिल कर देता है, अर्थात तेरे अंदर ही तेरी ये अवस्था हो जाती है कि मन नाम की सत्ता का वहां सत्ता वहां रहती ही नहीं, केवल आनंद रहता है, केवल ईश्वर की प्रेजेंस रहती है, जिसको मुक्ति कहते हैं। तो उसके लिए सारा मार्गदर्शन शास्त्रों का है कि इस देह के अंदर वो शक्ति, वो शांति, वो ईश्वर, वो सत्ता मौजूद है जिसको ईश्वर कहते हैं, और मैं उसका उसी प्रकार अनुभव कर सकता हूं जिस प्रकार मैं आज इस समय मन का अनुभव कर रहा हूं। मन में संकल्प उठ रहे हैं, संकल्प से कभी मनुष्य को शांति नहीं मिलती। स्मरण करने वाले बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि स्मरण का के लिए वक्त निकाल भी लिया, करने बैठ भी गए, तब मन इतना परेशान करता है कि मन करता है कि जल्दी से उठो और चलो। मन की यह दुर्गति है कि यही मन प्रभु भक्ति से इतना शांत हो जाता है कि इसमें एक संकल्प भी उठना कठिन हो जाता है। उस समय इस देह के अंदर जो अनुभव होता है उसको शांति कहते हैं, उसको आनंद कहते हैं, उसको ईश्वर अनुभव कहते हैं। तो बताइए, इस देह के अंदर ही हो सकते हैं। मन के सारे संकल्प बाहर के लिए, जो कुछ भी हमने बाहर सैकड़ों जन्म लेकर जीवन व्यतीत किया है वो मन के अंदर संकल्प के रूप में उदय होता है वो जी। लेकिन एक ईश्वर भी है जो संकल्प रहित है, उसका भी मैं इसी देह में अनुभव कर सकता हूं। तो जिसके अंदर ईश्वर विश्वास आ गया, गुरु विश्वास आ गया, वाणी पर विश्वास आ गया या शास्त्र पर विश्वास आ गया, वो फिर अंदर की खोज के लिए जन्म व्यतीत करता है और एक दिन उस शांति को प्राप्त कर लेता है। कौन सी शांति को कहते हैं कि सुख दुख दोनों सम कर पेक, आज्ञा साहब की हृदय देख। सुख दुख दोनों सम कर पेक, सुख और दुख दोनों को समान समझ कर कर देख। ये देखना मतलब इंटेंशनली नहीं हो सकता है, जानकर आप सुख दुख को एक जैसा नहीं समझ सकते। ये स्थिति हो जाती है कि सुख दुख तेरे लिए समान, क्योंकि मन का संकल्प जब उठना बंद हो गया तो इच्छा के कारण मन में संकल्प होता है, मुझे ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, जिसको राग और द्वेष है। राग द्वेष हर विषय में, हर वस्तु में आपके मन के अंदर होते हैं, ये आपके संस्कार। जो कुछ भी आप देखोगे, जो कुछ भी अनुभव करोगे संसार में, प्रकृति में, उसमें राग और द्वेष होगा ही होगा, इसको द्वंद्व कहते हैं, इसको सुख और दुख कहते हैं। तो हर वस्तु जब सुख दुख देने वाली है, तब विचार करके देखो तेरे मन में चैन कैसे आ सकता है, आ ही नहीं सकता, असंभव का। इसीलिए जो प्रभु का रास्ता है वो अंदर का रास्ता है, और उसको उस पर चलने के लिए जो मानव बुद्धि है उसको ये ज्ञान सीखना जरूरी है। जब तक ज्ञान ये सीखेगा नहीं, बुद्धि निर्णय कैसे करेगी और मन पर संयम करने के लिए वो कोशिश क्यों करेगी। इसीलिए जो शास्त्र है, जो प्रभु है, वो तो कह रहे हैं कि सुख दुख दोनों सम कर देख, सुख और दुख को तू समान समझ, सम करके देख। लेकिन क्या ये मेरे लिए समझ है? आप कहोगे पता नहीं क्या हमारी बात कर रहे हैं, सुख और दुख अलग चीजें हैं, एक जैसे कैसे हो सकती है। मेरे लिए जो असंभव है, जब ये ज्ञान पर मेरा निश्चय आता है, इस पर जब गुरु के अनुसार मार्गदर्शन के अनुसार कोशिश करता हूं, तो मुझे खुद अपने अनुभव से पता लगता है कि एक वो वक्त था कि सुख दुख में कितना बड़ा डिफरेंस होता था। एक दुख पड़ गया सहन करना मुश्किल हो जाता, आज बड़े से बड़ा सुख आता है वो मन को ज्यादा खुश नहीं करता, बड़े से बड़ा दुख आ जाता है तो मन मेरा डिप्रेशन में नहीं जाता। तो सुख दुख का जो गैप है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। एक दिन ऐसा आ जाता है कि अंतर्यामी ईश्वर का जब तू अनुभव होता है, उस प्रोसेस से जब गुजरता है, तब पता लगता है कि सुख और दुख दोनों ही निरर्थक है, उसको आनंद कहते हैं, वो है परम संतोष, वो है शांति। तो कहते हैं कि सुख दुख दोनों सम कर देख, आज्ञा साहब की हृदय देख। था पूरा तेरा शारीरिक जीवन ये प्रभु आज्ञा में चलता है, जो कर दिया प्रभु ने, जो दे दिया उसको तू सहन करता है, उसमें संतोष करता है। तो होता क्या है, इस सहनशीलता से, इस संतोष से तेरे अंदर जो प्रभु का ध्यान है वो गहरा होता रहता है, और एक दिन उस अंतर्यामी प्रभु का अनुभव करके अपने को भाग्यशाली समझता है कि प्रभु इस संसार में आपने जो मानव जन्म दिया, आज पता लग रहा है उसको कि वो मानव जन्म कितना कीमती था, क्या प्राप्ति के लिए चुन किया था, और आज जब मैंने उसको प्राप्त किया है तो ये पूरी प्रभु की माया ये गायब हो गई मेरे आंखों के सामने से। वो गहन समाधि लग गई जहां रचना है ही नहीं, और उस समाधि से जब तू जागता है तो तुझको अपने अनुभव से पता होता है कि इस संसार को मैंने क्या समझा था, ये निकला था, ये माया नजर आती थी, अब तो हर जगह ईश्वर नजर आता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी जामे दो ना समा। या प्रभु की माया नजर आएगी या प्रभु नजर आएगा, ये दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते। ये मेरी अंदर की स्थिति है, इस स्थिति में पहुंचने के लिए मानव धर्म उसको दिया गया था। मैंने क्या इसके दूरदर्शन किया, क्या इसको मिस यूज किया, तो मैं अपनी बुद्धि पर अहंकार करना छोड़ू, सत्पुरुषों की बात के आगे समर्पण करना शुरू करूं कि बात तो मेरी जो है वो तो अज्ञानों के बीच में पला, मेरी बुद्धि के निश्चय वैसे ही बने हुए, और असली बात तो वाणी बता रही है। तो मैं जब इस पर ध्यान देता हूं और दृढ़ इच्छा करके ध्यान देता हूं तो मेरी बुद्धि भी वही काम कर लेती है जो बुद्धि संसार में पीएचडी करती है, खोज करती है, जो प्रॉब्लम लेके खोज करती है उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पीएचडी में सॉल्व कर लेती है। तो मैं भी इस वाणी पर प्रभु के ज्ञान पर पीएचडी क्यों नहीं कर सकता, मैं इसकी खोज क्यों नहीं कर सकता। मेरे पास बुद्धि है लेकिन बुद्धि का निश्चय नहीं, विश्वास नहीं। तो जिसका विश्वास होता है वो कोशिश भी करता है, उसको फिर रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं, तभी उसका मार्जन सफल होता है। साची करनी जगत में सतपुरुषा करी पहचान, मंगत बंधी छूट कर पद पाया निर्वाण। तो सतपुरुषों की करनी है कि बंधी छूट कर पद पाया निर्वाण। ये निर्वाण पद ये मन रहित पद है जो इस देह के अंदर प्राप्त होता है, इसको मैं प्राप्त कर सकता हूं अपनी कोशिश से, प्राप्त कर सकता हूं प्रभु कृपा से, प्राप्त कर सकता हूं। लेकिन प्रभु तो अंदर अंतर्यामी है, वो तो कृपा करने को सदैव तैयार है, मैं ही बाहर घूम रहा। इसलिए जिसने वाणी पर अपना निश्चय लाया और सत्पुरुषों की बात को महत्व दिया, उसके अनुसार फिर उसने दैनिक अपनी दिनचर्या डिसाइड की, क्योंकि 24 घंटे मेरे ही, मैंने ही जीना है जीवन उन 24 घंटे के अंदर। तो उसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो प्रभु भक्ति है, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है प्रभु भक्ति, उसके लिए मैंने टाइम अलॉट किया ही। आप अपने अपने जीवन में देखिए कि हर काम के लिए आपके पास टाइम है लेकिन प्रभु भक्ति के लिए आपके पास टाइम नहीं है। आप क्या कहते हो कि मैं इतना बिजी इंसान हूं, मैं कहां से टाइम लेता। तो मानव जन्म पूरा का पूरा प्रभु ने तुझको दिया प्रभु भक्ति के लिए, और तूने उसको संसार में खर्च कर दिया। इसीलिए याद रखिए कि प्रभु भक्ति ऐसी चीज नहीं है जो केवल कोने में बैठ के होती है, प्रभु भक्ति वो चीज है जो युद्ध के मैदान में भी होती है, घर के काम करते हुए भी होती है, लेकिन तेरे मन के अंदर जो इच्छा पल रही है ना, वो इच्छा यदि प्रभु की तरफ बढ़ने की है, वो इच्छा यदि प्रभु के दर्शन की है, प्रभु को जानने की है, तो तेरे सारे काम संसार के होते हुए भी तेरा ये अंदर का काम हो सकता है। नहीं तो अर्जुन तो युद्ध छोड़कर चाहता है, उसको दया आ रही है, उसको दुख हो रहा है कि इतने लोग मारे जाएंगे, मुझे पता है युद्ध हुआ यदि ये सारे मार जाएंगे तो इनकी पत्नियां इनकी मां होगी तो उनका क्या हाल होगा। उसको सारे समाज का सारे देश का नक्शा उसके सामने है, इसलिए वो जीतना नहीं चाहता था, युद्ध करना नहीं चाहता, सब कुछ त्याग सकता था। इसलिए वो कह रहा है कि मैं संन्यास क्यों ना लेता, मुझे घोर कर्म करने की जरूरत ही क्या है, हे वासुदेव मुझे इस घोर कर्म करने में आप क्यों डाल रहे हैं। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि ये प्रारब्ध ये सारे मरने के लिए ही यहां इकट्ठे हुए हैं, ये युद्ध तो हो चुका है, तू करने वाला कोई नहीं। तो अंतर क्या है अर्जुन के अंदर, अंतर क्या है। तभी जब निश्चय नहीं हुआ तब वासुदेव ने उसको कहा भी जो तू देखना चाहता है मैं मुख खोलता हूं तू इसमें देख जो तेरी इच्छा है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि दी उसको दिव्य चक्षु दिया उसने जो कुछ भी देखना चाहता था वो में ही सारा दृश्य देख लिया। अब उसके अंदर निश्चय हो गया कि कारण कर्ता वास्तव में प्रभु है मनुष्य नहीं। वर्तमान जन्म जो मेरा है हर मनुष्य का वो प्रारब्ध के अधीन है यहां तक कि सत्पुरुष का शरीर भी प्रारब्ध के अधीन है लेकिन हर शरीर में प्रभु खुद मौजूद है। तो यदि मेरे इच्छा दृढ़ इच्छा तीव्र इच्छा प्रभु मिलन की हो तो ये मन अंदर लग सकता है लेकिन दृढ़ इच्छा हो दृढ़ इच्छा कब होती है तो बुद्धि का आपका पक्का निश्चय होता है कि प्रभु अंतर्यामी है वो आनंद रूप है वो जीवन रूप है वो चेतना रूप है मेरे मैं जो जान रहा हूं जानने की सामर्थ्य प्रभु के कारण है। मेरे जीवन के अंदर रोग रोग के अंदर जो प्राण काम कर रहा है इसमें जीवन है वो प्रभु का प्रभु की शक्ति है उसके बिना तो मेरा शारीरिक जीवन ही नहीं। ऐसा दृढ़ निश्चय मेरे अंदर होता है इस ज्ञान को पढ़ पढ़ के विभीषण करके तब हर वक्त अंदर से प्रभु की याद बनी रहती है। संसार में कर्तव्य भाव से कर्म करते हो उसका गहरा संस्कार आपके मन में बनता ही नहीं और जितनी तीव्र लगन से आप कर्म करते हो उतना गहरा संस्कार आपके अंदर बन जाता है। और यदि अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कोई पाप कर दिया आपने जिस पर जो अनधिकार चेष्टा है तो उसका तो महागहरा संस्कार बनता है आप कल्पना नहीं कर सकते। उस संस्कार को खत्म करने में आपको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए मान कहते हैं प्रेमी संसार में रहकर ईमानदारी का जीवन व्यतीत करने की कोशिश करें और जो कुछ भी सुख और दुख लोगों के द्वारा प्रकृति के द्वारा अपने शरीर के द्वारा कुछ मिलता है उसको ईश्वर का हुक्म जान क्योंकि दुनिया की कोई ताकत तुझको लेश मात्र भी कम ज्यादा दे नहीं सकती। ईश्वर के हुक्म के अंतर्गत ही तुझको सुख भी मिलेंगे दुख भी मिलेंगे काम बनेंगे भी काम बिगड़ेंगे भी। यदि तेरा विश्वास ईश्वर पर है तो तू संसार की फिक्र नहीं करता जानता है मेरा पालन करने वाला ईश्वर है और वो अंतर्यामी है मुझे क्या चिंता करने की जरूरत है। तो अपना काम ईमानदारी से करता है और हर वक्त तेरे अंदर प्रभु की याद बनी रहती है। तू प्रभु के हुक्म में ही दैनिक जीवन व्यतीत करता है उसके हुक्म में ही जीता है। तो ऐसा मनुष्य जब स्मरण करने बैठेगा तो उसका मन कैसे नहीं रहेगा मन ही नहीं रहेगा प्रभु की कृपा भी अंदर प्रकट होगी। उस कृपा में पता वो प्राप्त करके तुझको पता लगता है कि वास्तव में सारे आनंद के खान तो ये प्रभु का जी प्रभु के प्रभु का दर्शन है प्रभु का अनुभव है जिसको जिसको करके जिस अनुभव को प्राप्त करके ये मनुष्य निहाल होता अर्थात मन चित्त इसका प्रसन्न हो जाता है और प्रभु के साथ एक हो जाता है। ओम नमः शिवाय।